परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि इसराइली परमेश्वर पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, जबकि परमेश्वर उनसे कहता है कि अपने मनों को फिराओ। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में आशीषों को जोड़ने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि परमेश्वर दशमांश और भेंट में कटौती के विषय इसराइल को चोर कहता है। हम देख रहे थे कि पौलुस प्रभु के लिए भेंट लाने के विषय विश्वासियों को निर्देश दे रहा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 और 9 में पौलुस विश्वासियों को दान देने का आधार समझा रहा है। मेरे विचार में आज के समृद्ध समाज में कुछ लोगों को दशमांश से अधिक देना चाहिए। इसराइलियों ने 10वें भाग से अधिक दिया, उनके 4 दशमांश थे। हमारी कलीसिया का एक ही सदस्य था जो व्यापार में था, वह धनवान था और उसके पास बहुत बड़ा खेत भी था जहां एक नदी बहती थी। एक दिन हम उसी नदी में नाव में बैठकर मछली पकड़ रहे थे। उसने मुझसे कहा, पास्टर, आप दशमांश देने पर प्रचार क्यों नहीं करते? मैंने उससे कहा, मैं दशमांश में विश्वास नहीं करता हूं। वह दशमांश देने में विश्वास करता था और देता भी था। मैं जब जब उससे भेंट करता, तब तब वह मुझसे यही कहता था कि मैं दशमांश पर उपदेश दूं। अंत में मैंने दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 पढ़कर उसे सुनाया। तदुपरांत मैंने उससे कहा, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिन्हें दशमांश से भी अधिक देना चाहिए। मेरे विचार में आप डॉक्टरों को छोड़ कलीसिया में सबसे अधिक पैसा कमा रहे हैं और मेरे विचार में आपको दशमांश से अधिक दान देना चाहिए। इसके बाद उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे दशमांश पर उपदेश सुनाना चाहिए। वह दशमांश देकर संतुष्ट था। यदि मैं कहता हूं कि हमें दशमांश से अधिक देना चाहिए, तो यह मैं कह रहा हूं, परंतु प्रभु यीशु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और वचन का प्रसारण करना चाहते हो तो दान दो, अन्यथा आवश्यक नहीं कि तुम दान दो। परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। उन्होंने परमेश्वर को धोखा कैसे दिया? उन्होंने परमेश्वर को लूटा था, पर कैसे? इसराइल की सब आशीषें परमेश्वर ने दी हुई थी, परंतु परमेश्वर उनसे कहता है, तुम 9 भाग रख लो, मुझे केवल 1 भाग ही देना। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं जानूं कि तुम मेरा मान रखते हो। पिछली पीढ़ी के बड़े बड़े व्यापारी दिल खोलकर परमेश्वर को दान देते थे। एक पास्टर की विधवा का किसी ने साथ नहीं दिया, जब यही कहते थे और सबका मानना भी था कि दान देना है। और सब लोग कहते थे, प्रभु आपको आशीष दे। उसका पुत्र छोटा ही था और वह अपनी माँ के लिए लोगों के कपड़े धोने के लिए लाता था। उसने प्रण किया कि वह बड़ा होकर ऐसा प्रबंध करेगा कि किसी भी पास्टर की विधवा कभी ऐसा दुख ना उठाए। उसने धन कमाया और सेवानिवृत्त पास्टर तथा उनकी पत्नियों और विधवाओं के लिए गांव बसाए। इन सब व्यापारियों को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया, क्योंकि उन्होंने दान देने में परमेश्वर का मान रखा। मेरे विचार में यह आज भी सच है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि आप सहर्ष दान दें। मलाकी नबी की पुस्तक 3:9 में लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर चाहता है कि आप अनुग्रह के अधीन अपने क्षमता के अनुसार दान दें। कुछ के लिए ऐसा दान दशमांश से कम होगा, तो कुछ के लिए यह दान दशमांश से अधिक होगा। मेरा अपना विचार यह है कि हमारे समृद्ध समाज में बहुत लोगों को परमेश्वर के लिए कहीं अधिक देना चाहिए। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने सदस्यों को मूसा की व्यवस्था के अधीन रखकर उनसे दशमांश लेते हैं, और ये संस्थाएं बहुत धनवान हैं। उन्हें देखते हुए क्या आप यह नहीं सोचते कि अनुग्रह के अधीन रहने वालों को अपनी क्षमता के अनुसार परमेश्वर को देना चाहिए? यह भी एक कारण है कि हम परमेश्वर के काम को आशीषित नहीं देखते। कुछ कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन का शिक्षक प्रचारक है, परंतु वे कहीं नहीं पहुंचे हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि वह हमारे दान देने को देखता है। यदि कोई परमेश्वर को नहीं देता, तो परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा नहीं दी है। जी हां, मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर अपने भक्त को निश्चय ही आशीष देगा, चाहे वह सांसारिक आशीष ना हो। इफिसियों के पत्र 1:3 में पौलुस कहता है कि हमें मसीह में सब स्वर्गिक स्थानों में आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। अतः परमेश्वर अति अनुग्रहकारी होकर उदार मनुष्यों को आशीष देगा। यह परमेश्वर के संपूर्ण वचन में व्याप्त एक सिद्धांत है। आज अनेक कलीसियाओं के पतन का कारण है कि सदस्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार दान नहीं दिया। जब हम परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलकर दान देते हैं, तो परमेश्वर भी दिल खोलकर हमें आशीष देता है, जो सांसारिक नहीं होगी, परंतु इस्राएल के परमेश्वर ने सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। हमें उसने स्वर्गिक स्थानों में सब आत्मिक आशीषें देने की प्रतिज्ञा की है। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों से जो प्रतिज्ञा करता है, उसे वह पूरा भी करता है। यहूदा के राजा हिजकिया के युग में महान जागृति आई थी। दूसरा इतिहास की पुस्तक 31:10 में लिखा है, अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटे लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने पाते हैं, वरन बहुत बचा भी रहता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह ढेर है। इसका अर्थ है कि लोग भवन में बहुत भेंट ला रहे थे। जब मूसा मिलाप वाले तंबू बनवा रहा था, तब उसने भेंट लाने का आग्रह किया और लोग बहुतायत से भेंट लाए, यहां तक कि मूसा को अंततः उनसे कहना पड़ा कि अब वे भेंट लाना बंद कर दें, अर्थात रोक दें। यही एकमात्र संदर्भ है जहां श्रद्धालुओं को भेंट चढ़ाने से रोका गया था, परंतु यह उस युग की बात थी, आज की नहीं। मलाकी की पुस्तक 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे मित्रों, मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि हम दशमांश देने की व्यवस्था के अधीन नहीं है। कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जिनके लिए दशमांश की राशि देना लगभग असंभव है। दूसरी ओर कुछ लोग इतने समृद्ध हैं कि वे यदि अपनी आय का अधिकांश भाग भी दे दें तो अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु वे दें तब तो दशमांश नियम की कोई मापदंड नहीं है। कहने का अर्थ है कि दशमांश नियम ही आपका एक प्रकार का मापदंड है, परंतु वह न तो वैधानिक है और न ही अनिवार्य है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। आज कुछ लोग आराधनालय को भंडार कहते हैं। सच तो यह है कि जिस प्रकार दशमांश कलीसिया के लिए विधान नहीं है, उसी प्रकार आराधनालय भी भंडार नहीं है। इसराइल में मंदिर में भंडार गृह होता था, वरन मंदिर में अनेक कक्ष थे जिन्हें भंडार गृह के रूप में काम में लिया जाता था, जिनमें आराधकों द्वारा लाया गया दशमांश रखा जाता था। जब नहेमिया दूसरी बार यरूशलेम लौटा था, तब उसने देखा कि मंदिर के एक भंडार गृह में तोबियाह रहता है, जो परमेश्वर का विरोधी था। यह समय संभवतः मलाकी से कुछ पहले का था, क्योंकि इसराइली भरपूर दान नहीं दे रहे थे, इसलिए भंडार गृह खाली थे, तो उन्होंने तोबियाह के रहने के लिए वहां प्रबंध कर दिया था। नहेमिया ने उसका सामान बाहर फेंकवा दिया और उसे देश से बाहर जाने का आदेश दिया। जब लोगों ने प्रेरित होकर भेंटे लाना आरंभ कर दी और भंडार घर फिर से भर गया। आप देखें नहेमिया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 4 से 9 पद में, जहां पर यह घटना लिखी है। आज हमारी भेंटों में ऐसा कुछ नहीं है कि भंडार गृहों में भर कर रखा जाए। इसराइल की भेंटों में उपज भी होती थी, बलि चढ़ाने के लिए भी नियम थे। उन्हें बलि के पशु का एक भाग याजक को देना होता था। परमेश्वर का निर्देश था कि वे बलि चढ़ाए हुए पशु को वहीं खाएं। वे मांस तो भंडार में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस युग में फ्रिज नहीं थे, अतः मांस उन्हें तुरंत खा लेना था, परंतु अन्य भेंट वे गोदाम में रख देते थे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि वे परमेश्वर के साथ उदारता प्रकट करें तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह आकाश के झरोखे खोलकर उन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा और वह नाश करने वाले अर्थात टिड्डियों को नष्ट कर देगा। टिड्डियां हरियाली की दुश्मन थी, उन्होंने इसराइल को अनेक बार नष्ट किया है। अतः परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। आज भी परमेश्वर को त्यागने वाला राष्ट्र दंड पाता है। आज महंगाई परमेश्वर का दंड है या भविष्य की चेतावनी है? मेरे विचार में तो हमने अभी कुछ नहीं देखा है। यहां पर आगे हम पढ़ते हैं, वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दूसरे शब्दों में दाख की विपुल उपज होगी और वे आशीषित होंगे। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 12 में लिखा है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब इसराइल का संबंध परमेश्वर के साथ उचित था, तब वे संसार की अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण थे। परमेश्वर के साथ सत्य निष्ठा के कारण वे अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण थे। जकरिया के पुस्तक 8 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहूदा के घराने और इसराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष का कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। मेरे मित्रों, यह भविष्य की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि वह उस समय उन्हें सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जब इसराइल परमेश्वर की सेवा में होता था, तब वह अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण होता था। पद 13 में उनकी अंतिम निंदा की प्रतिक्रिया है, जो वे परमेश्वर की शिकायत के प्रति व्यक्त करते हैं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढीठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परमेश्वर की शिकायत थी कि उन्होंने उसके विरुद्ध ढिठाई की बातें की। वे निर्लज्जता से कहते हैं, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परमेश्वर उनसे स्पष्ट कहता है। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। मेरे मित्रों, इसराइल कहता था, परमेश्वर की सेवा करने से हमें क्या लाभ होगा, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि उनका मन आराधना में नहीं था, इसलिए उन्हें वह सब व्यर्थ लगता था। क्योंकि उनका मन परमेश्वर में नहीं था, इसलिए वे परमेश्वर से आशीष नहीं पाते थे और कहते थे कि परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ है। आज भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं और करते भी हैं। जबकि सच यह था कि जिस मन से वे आराधना करते थे वह परमेश्वर के लिए व्यर्थ था। मेरे प्रियो, मैं एक कठोर बात कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के लिए आराधना में उपस्थित होने से तो अच्छा है कि वे कहीं घूमने के लिए चले जाएं, क्योंकि उनके मन वास्तव में आराधना में नहीं होते हैं। कुछ लोग तो आराधना में केवल आलोचना करने के लिए ही जाते हैं। किसी ने कहा है, कुछ लोग आराधना में कपड़े देखने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग आंखें बंद करके जाते हैं और कुछ लोग आंखें बंद करने के लिए बैठते हैं। कुछ लोग आराधना में बैठ करके सोते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका मन आराधना में नहीं है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, यदि आप उसकी स्तुति नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, तो आपके लिए सब व्यर्थ है और भला होता कि आप घर पर होते। आज हमारी आराधना बड़ी आकर्षक है। प्रभु यीशु ने कुएं पर सामरी स्त्री से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 से 24 पद में, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब उस पर्वत पर आराधना नहीं की जाएगी, परंतु वे आज भी उस पर्वत पर बलि चढ़ा रहे थे, न यरूशलेम में। यरूशलेम परमेश्वर की आराधना का स्थान नहीं है। वहां हर प्रकार का मसीही संप्रदाय है, जो प्रभु यीशु के संदेश और प्रेरितों की शिक्षा से बहुत दूर है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, अर्थात वे परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे, वे उसकी सेवा करना चाहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की मनोकामना रखेंगे, वे उसकी आराधना और स्तुति के इच्छुक होंगे। एक दिन एक पुरुष ने मुझसे कहा, पास्टर, आप सोच रहे होंगे मैं नरक जाऊंगा, क्योंकि मैं रविवार के दिन फुटबॉल खेलता हूं। मैंने कहा, कदापि नहीं, आप फुटबॉल खेलने के कारण नरक में नहीं जाएंगे। आप नरक में इसलिए जाएंगे कि आपने प्रभु यीशु का इनकार किया है। फुटबॉल का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो कुछ ऐसे कलीसिया सदस्यों को जानता हूं जो रविवार को फुटबॉल खेलते हैं, और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग फुटबॉल खेलने के लिए जाएं तो अच्छा होगा। उनका आराधनालय में रहना उचित नहीं, क्योंकि वे उपद्रवी हैं। वे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, धर्म का बाहरी दिखावा उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका मन और प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध कैसा है। क्या आप आज प्रभु यीशु के साथ अपने संबंध को देख सकते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या आप उसके महिमा के लिए, उसके सेवकाई के लिए दान देते हैं? मेरे मित्रों, आपको स्वयं ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है तो आज के वचन पर विचार करें, अपने जीवन में एक निर्णय लें और उसके आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कदमों की पास बुला।